अजनबी समझती हैं आप मुझे? अजीब सा गम और उदासी उसके स्वर में खुली थी और चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए थे। साथ ही झलक रही थी एक अनकही सी शिकायत। सब देखकर और महसूस करने के बाद भी राधिका का चेहरा भावहीन बना रहा। शायद, पर अजीब बात यह है कि आपको ज्यादा जानती भी नहीं, आपसे कोई रिश्ता भी नहीं, पर फिर भी आपको अजनबी भी नहीं कह सकती, क्योंकि अजनबियों से इस तरह मुलाकातें नहीं हुआ करती, ऐसे बातें नहीं हुआ करती, और वे शायद मेरे लिए इतनी परेशानी भी नहीं उठाते। कुछ अजीब से भाव राधिका के चेहरे पर उभरे थे और लबों पर ठहरी मुस्कान में बेबसी झलक रही थी। माधव के चेहरे के भाव कुछ कोमल हो गए। चलिए, तो एक अपना सा अजनबी ही समझ लीजिए आप मुझे, और बताइए, कुछ लेंगी चाय या ठंडा? माधव ने बातों का रुख ही मोड़ दिया, जिसने उनके बीच बने तनाव के माहौल को खत्म कर दिया। राधिका ने भी उस पर से निगाहें फेर ली। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको पीना हो तो पी लीजिए। दोनों के दिलों में एक तूफान सा उठ रहा था। लब खामोश थे, शायद दिल में बसे अपने जज्बातों से लड़ रहे थे वे। कुछ देर की खामोशी के बाद माधव ने राधिका का रुख किया। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो, और आप बुरा ना माने तो? राधिका अब तक खुद को संभाल चुकी थी और नॉर्मल हो गई थी। उसने पलटकर माधव को देखा। पूछिए। ये स्कूटी तो काफ़ी पुरानी हो गई है, मॉडल भी काफ़ी पुराना है, उस वक्त ही ठीक से काम नहीं कर रही थी, अब तो और भी दिक्कत देती होगी आपको, फिर आपने अब तक इसे बदला क्यों नहीं? माधव ने स्कूटी की ओर इशारा करते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर राधिका चौंक गई। आपको मेरी स्कूटी याद है? राधिका का हैरानी भरा सवाल सुनकर माधव ने सहजता से हामी भर दी। बिल्कुल, उस पर आगे नंबर प्लेट पर बारीक अक्षरों में आपका नाम लिखा है, जो ध्यान से देखने पर ही नजर आता है, जो सालों पहले भी था और आज भी वही है। माधव का जवाब सुनकर कुछ पुरानी यादें राधिका के जहन में उभरी और लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गईं। एक्चुअली ये स्कूटी मुझे पापा ने दिलाई थी जब मैंने 12वीं में अपने स्कूल में टॉप किया था, तब, जिसके लिए वे सालों से थोड़ी थोड़ी करके सेविंग्स कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे स्कूटी लाकर दी थी तो मैं बहुत खुश हुई थी, पर मम्मी बहुत नाराज़ हुई थी उन पर, क्योंकि पापा ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे स्कूटी दिलाई थी। लेकिन मेरा खुशी से खिला चेहरा देखकर मेरे पापा अपनी सारी चिंता फिक्र भूल गए थे। स्कूटी पर जो नाम लिखा है वो तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन की हरकत थी। मुझसे जो छोटी थी उसे मेरी हर चीज़ पसंद आ जाती थी, और मेरी चीज़ें लेने का, उसे इस्तेमाल करने का बड़ा शौक था उसे। जब छोटी वाली उसे टोकती तो तुरंत ही बोल देती कि उस पर दीदी का नाम नहीं लिखा, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और यही वो स्कूटी के साथ भी कर रही थी। तो चिढ़कर मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने स्कूटी पर मेरा नाम लिख दिया, ताकि मेरी स्कूटी वो ना इस्तेमाल कर सके। ये स्कूटी भले ही पुरानी हो गई है, पर उससे जुड़ी हुई यादें आज भी उतनी ही ताज़ा है। बहुत खास है ये स्कूटी मेरे लिए, इस स्कूटी से मेरे सेंटिमेंट जुड़े हैं, इसलिए इसे बेचने का मन नहीं करता मेरा। राधिका पल भर को उस वक्त में कहीं खो गई थी। सच कहते हैं लोग, अहम चीज़ें नहीं होती, उनसे जुड़ी यादें होती हैं, और उन्हीं यादों से उन बेजान चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे राधिका के लिए ये पुरानी मामूली सी स्कूटी खास थी, जिससे उसकी जिंदगी की कुछ अच्छी यादें जुड़ी थीं, जिन्हें वो कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर अब आपको इसे बेचकर दूसरी स्कूटी या कार ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूटी भले ही आपके लिए बहुत खास है, पर अब आपका और साथ नहीं दे सकती, और इसे बेचने से उससे जुड़ी यादें नहीं मिट जाएंगी, वे हमेशा आपके दिल में रहेंगी। माधव से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी राधिका को। पल भर वो चकित सी उसे देखती ही रह गई, फिर सहमति में सर हिलाते हुए नजरें अपनी स्कूटी की ओर घुमा ली, और इसके साथ ही सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर आधे रख गई। राधिका, आपको याद है ऐसे ही इत्तेफाक से पहले भी हमारी मुलाकातें हुई थीं? कुछ देर के बाद माधव ने बात शुरू की। राधिका के मुस्कुराते लब सिमट गए और सवालिया निगाहें उसकी ओर घूम गईं। बीते सालों में तो मैंने कभी आपको यहाँ नहीं देखा, पर आजकल इत्तेफाक से आपसे बहुत मुलाकातें होने लगी हैं, सोचकर हैरत होती है। दिल में तूफान मचाया सवाल लबों पर आ ठहरा था, ताज्जुब होना लाजमी भी था, और इस सवाल को सुनकर माधव को कुछ खास हैरानी भी नहीं हुई थी। असल में पहले यहाँ नहीं रहता था मैं, सूटेबल जगह और मार्केट एरिया देखकर यहाँ रेस्टोरेंट खोला, तो आना जाना होने लगा, पर घर से थोड़ा दूर पड़ता था। थोड़े पैसे इकट्ठे किए, बैंक से लोन लेकर यहाँ खाली ज़मीन खरीदी और घर का काम शुरू करवाया। कुछ वक्त पहले ही घर बनकर तैयार हुआ तो यहाँ शिफ्ट हो गए। हालांकि अभी बस एक मंजिल ही बनवाया है, पर पैसे होंगे तो ऊपर भी बनवाऊंगा, जिससे किराया आएगा तो कुछ सेविंग हो जाएगी, साथ ही इंस्टॉलमेंट भरने में भी आसानी हो जाएगी। ओह, राधिका ने होठों को गोल करते हुए आवाज़ निकाली और खामोश हो गई। उसके माथे पर उभरी लकीरें उसकी चिंता व परेशानी जाहिर कर रही थीं। माधव कुछ पल खामोशी से राधिका को देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए ठहरे गंभीर स्वर में बोला, राधिका, आप भले ही मुझे अजनबी समझें, पर मेरे लिए आप कभी से अनजान अजनबी नहीं थी। पता नहीं आप इस बात को किस तरह से लेंगी और आपको अच्छा लगेगा या बुरा, पर मेरा आपके साथ एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है, जिसे शब्दों में परिभाषित करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि भले मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, आप अनजान हैं मेरे लिए, आपसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, पर आप अपनी सी लगती हैं मुझे और मैं दिल से आपको खुश देखना चाहता हूँ। कुछ अनकहे से जज्बात अल्फाजों में बयां हुए थे। राधिका टकटकी लगाए पलक उसे देखने लगी थी। मन में कुछ भावनाएं उमड़ घुमड़ करने लगी थी। माधव के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। सीने में दर्द की एक लहर सी उठी थी और मन से दर्द भरी आवाज उभरी थी। रिश्ता? हाँ, रिश्ता ही तो जुड़ने वाला था हमारे बीच, एक अनचाहा अनजाना सा रिश्ता जो जुड़ने से पहले ही टूट गया। कभी इश्क ने भी हमारा द्वार खटखटाया था, तेरी गुर्बत में हमने अपना सुकून पाया था, खुदा का भी तहे दिल से शुक्र अदाया था, उस मौला की करामात से हमने तुम्हें पाया था, बिन कुछ कहे ही तुमने हमारे दिल को धड़काया था, कुछ अनकहे एहसासों तले हमने तुम्हें अपना बनाया था, अपनी किस्मत पर तब हमें रश्क आया था, बिन मांगे नसीब ने हमें तुमसे मिलवाया था, पर चाह कर भी हम एक हो न सके, टूटा था दिल पर खुलकर रो न सके, तुझे खोकर कभी सुकून से सो न सके, दिल के करीब होकर भी तुम कभी मेरे हो न सके, मेरे हो न सके। दर्द भरी आह उसके कांपते थरथराते लबों से आजाद हुई। दर्द से सनी सुर्ख आंखों में गुलाबी पानी तैर गया। दिल में एक टीस सी उठी और मन में भावनाओं का ज्वार उठने लगा। अगले ही पल राधिका ने माधव की ओर से निगाहें फेर ली, आंखों की नमी को आंखों में ही सुखा लिया और खुद को संयमित करने की कोशिश करने लगी। आखिर उसके आगे कमजोर जो नहीं पड़ना चाहती थी, सालों से जिन एहसासों को दिल के किसी कोने में दफन किए हुए थे, अपनी उन भावनाओं को उजागर जो नहीं कर सकती थी उसके सामने, कभी जिससे मोह भंग हुआ था आज फिर उससे मोह का बंधन नहीं जोड़ सकती थी। दोनों उन अनकहे से एहसासों में उलझे थे। इतने में मैकेनिक ने स्कूटी ठीक होने की खबर दी और उनके वार्तालाप पर पूर्ण विराम लग गया। माधव को थैंक यू कहते हुए राधिका पैसे देकर जल्दी से वहां से निकल गई और पीछे खड़ा माधव मायूस निगाहों से हताश सा उसे एक बार फिर खुद से दूर जाते देखता रहा। टू बी कंटिन्यूड।